आज रात मुझे जूत में उंगली किए बिना ही अच्छी नींद आई। अगले दिन जब मैंने अपनी सहेलियों को ये सब बताया तो वो सब तो पागल हो गईं। उनको मैंने अपने शरीर पर पड़े सत्यम के दांत और उंगलियों के निशान दिखाए। मेरे होंठ, जिनको सत्यम ने इतना ज़्यादा चूसा कि उनमें खून जम गया था और होंठ कट गए थे, मैंने उन्हें वो सब दिखाया। ये सब देखकर वो अब भी उससे मिलने की ज़िद करने लगी। मैंने कहा, अभी थोड़ा रुक जाओ, कुछ जुगाड़ करती हूँ मैं। कुछ दिन बाद मैंने सत्यम को घर बुलाया तो उसने मेरी गांड का बंधन खोल दिया, जिसकी वजह से मैं एक दिन स्कूल नहीं जा सकी। मैंने सत्यम से एक दिन चुपने के बाद अपनी फ्रेंड्स के बारे में बताया, उससे पूछा तो उसने मना कर दिया। मैंने उसे समझाया कि देखो, इस चीज़ से सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत होनी चाहिए, तुम्हें नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम किसी के साथ भी कुछ भी करो लेकिन रहोगे तो सिर्फ मेरे। और जैसे किसी गरीब को पैसे देने से उसकी मदद होती है, उसी तरह किसी का सहारा बनना भी एक मदद है। वो मेरे बहुत समझाने के बाद आखिर मान गया। फिर एक दिन संडे को मैंने ग्रुप सेक्स का प्रोग्राम रखा, जिसमें मेरी सहेलियाँ सुबह 10 बजे आ गईं। सत्यम 11 बजे आया। पहले तो मैंने उसे सबसे मिलवाया और परिचय करवाया। मेरी सभी सहेलियों के फिगर लगभग मेरी तरह ही हैं। आज के दिन के लिए मैंने एक बड़ी वाइन की बोतल भी लेकर आई थी, जिसमें सत्यम ने हमारा साथ कोल्ड ड्रिंक से दिया और हम सब दो दो पैग लगाने के बाद मूड में आ गए। सत्यम के पास सबसे पहले ममता बैठी और उसके होंठों को चूमने लगी। सुमिधा नीचे बैठकर सत्यम की पैंट उतारकर उसका मोटा लौड़ा चूसने लगी। तब तक अनामिका उसकी शर्ट उतार के उसके बदन को चाटने लगी और मैं सुमिधा के साथ बैठकर कभी सत्यम का लंड तो कभी गोली चूसती। आज सत्यम के ऊपर 4 औरतें सवार हो गई थी, वो भी हम सबके मज़े ले रहा था। ममता अपनी चुच्चियाँ खोलकर सत्यम को दूध पिलाने लगी। तब तक सुमेधा भी नंगी हो गई और वो भी सत्यम की दूसरी बाजू में बैठ गई। अब वो दोनों बारी बारी अपनी चुच्ची मेरे यार को पिला रही थी। ये सीन देखकर मैं और अनामिका भी अपने कपड़े उतारने लगी। ममता तब तक नीचे आ गई और सत्यम का मोटा लंड चूसने लगी। तो दोस्तों, इस तरह से हम चारों ने बारी बारी से सत्यम का लंड चूसा और उसे गर्म किया। अनामिका ने पोज बनवाया और वो सत्यम से अपनी चूत चटवाने लगी। उसकी देखा देखी हम सब ने एक एक करके सत्यम से अपनी चूत और गांड चटवाई। फिर सबसे पहले सुमेधा ने सत्यम का लंड अपनी चूत में लिया। ममता नीचे लेटकर सत्यम की गोली चूस रही थी। तब तक अनामिका सत्यम के सामने आई और उसने फिर से अपनी चूत चटवाने लगी। मैं अनामिका से अपनी गांड का छेद चटवा रही थी। और आप ये कहानी freesexkahani.com पर सुन रहे हैं। इस तरह पहले एक बार सत्यम ने बारी बारी से हम सब चुदकड़ों की चूत फाड़ी और अपना सारा माल हमको पिलाया। दूसरे राउंड में बारी बारी से सबकी गांड बजाई। इस तरह सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक 2 राउंड हुए, जिसमें सबकी भरपूर चुदाई हुई। इसके बाद मैंने और सुमेधा किचन में आए और हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया। खाना खाकर सब एक साथ नंगे एक बेड पर सो गए। शाम को 5 बजे के करीब मैं उठी तो मैंने देखा कि अनामिका सत्यम का लंड चूस रही थी। मैं भी उन दोनों के साथ शामिल हो गई। फिर जब सत्यम ने हम दोनों को बारी बारी से चूदा तो ममता और सुमेधा भी जाग गईं। एक बार में सत्यम के लंड से हम दोनों चूदे और दूसरे राउंड में ममता और सुमेधा चूकीं। इसके बाद चाय और नाश्ता चला। चाय के बाद सबने सत्यम का नंबर लिया और उसको भी अपना नंबर दे दिया। फिर सत्यम चला गया। हम सब रात के खाने की सोचने लगे तो सुमेधा ने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। जब तक खाना आता, हम चारों ने दारू और सिगरेट के मज़े लिए। दो दो पैक खींचने तक खाना आ गया। हम सब ने रात का खाना खाया और मेरी सहेलियाँ अपने अपने घर चली गईं। कुछ दिन तक यही चुदाई चुदाई चलती रही। जिसको भी चुदना होता तो वो मेरे घर चली आती थी। सत्यम तो मेरा पति हो ही गया था, तो मेरा जब भी मन होता तब मैं उसको अपने घर बुलाती और मज़े से उसका लंड अपने बुर में घुसवा कर मज़े लेती। एक दिन मेरी बेटी का कॉल आया, मैं कुछ दिनों के लिए घर आ रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है, आ जाओ। बिटिया से बात करने के बाद मैंने सत्यम और अपनी सारी फ्रेंड्स को बताया कि अभी कुछ दिन के लिए घर में चुदाई का खेल नहीं होगा, मेरी बेटी आ रही है। सब मान गए। अब अगले दिन शाम तक मेरी बेटी घर आई। मैं उसके घर आने से बहुत खुश थी, लेकिन मुझे वो कुछ गुमसुम सी लग रही थी, बहुत खुश नहीं थी। मैंने अगले दिन स्कूल से छुट्टी ली और उससे कहा कि चल आज घूमने चलते। उसने मना कर दिया। इस तरह अगले दिन भी उसने मुझसे ज़्यादा बातें नहीं की। मुझे उसकी चिंता होने लगी। शाम को मैंने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने मुझसे बात को टाल दिया और कुछ नहीं बताया। शाम को ही उसकी एक सहेली मिलने आई तो वो उसके साथ बाहर वाले कमरे में बैठकर बातें कर रही थी और मैं अंदर कमरे में थी। मैंने आरुषि का फ़ोन चेक किया तो मुझे समझ में आ गया कि वो अपने पति से झगड़ा करके आई है। शायद इसलिए मुझे कुछ बता नहीं रही कि झगड़े का सही कारण क्या है। वो मुझे अभी भी नहीं पता था। जब उसकी फ्रेंड चली गई तो हम दोनों रात को एक साथ खाना खा रहे थे, तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है और इसलिए तुम यहाँ आई हो? आरुषि एकदम से चौंक गई। और मुझे कैसे पता चला? मैंने उससे कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे सब पता चल गया। आरुषि एकदम मुझसे लिपट कर रोने लगी और बोली, क्या बताऊँ मम्मी, जब से शादी हुई है बस घर की नौकरानी बन गई हूँ। वो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देते और ना ही मुझसे ठीक से बात करते हैं, इसलिए मैं गुस्सा होकर यहाँ चली आई। जब से आई हूँ एक बार भी फ़ोन तक नहीं किया। अब तो ऐसा लगता है चाहे ज़िंदगी भर यहाँ नाराज़ बैठी रहूँ, वो मुझे मनाने नहीं आएंगे। उसने आगे बताया, वो दिन भर काम पर रहते और रात को बोलते मैं बहुत थका हूँ और सो जाता हूँ। जब मम्मी आप ही बताओ, शादी के बाद से इन्होंने मुझे बस दो चार बार छुआ है, बाकी दिन बोल देते थे आज मन नहीं है। अब मैं कैसे बर्दाश्त करूँ? जब मैं बच्चे के लिए बोलती हूँ तो कहते हैं अभी मैं तैयार नहीं हूँ। अब आप ही बताओ मैं उस घर में कैसे खुश रह सकती हूँ? मैं उसकी बात सुन रही थी, मेरी बेटी आगे बोली, अच्छा आप ही बताओ मम्मी, पापा भी आपके साथ ऐसे थे क्या? मुझे मालूम है आप भी तड़पती रहती थी, अब उनके जाने के बाद अपने अंदर की आग को आप कैसे शांत करती हो, मुझे नहीं पता। उसकी बात सुनकर मैं कुछ सोचने लगी। पहले अपनी बेटी से बात छुपाना चाहती थी, लेकिन मेरे से ज़्यादा उसको दूसरे मर्द की ज़रूरत थी। मैंने कहा, देखो बेटी, जिस तरह एक इंसान के शरीर को खाने पीने की ज़रूरत होती है, उसी तरह उसको संभोग की भी ज़रूरत होती है। अगर किसी मर्द को घर में खुशी ना मिले, अगर वो बाहर मुँह मारे, तो लोग औरत को ही गलत कहते हैं, और अगर औरत मुँह मारे तो वो उल्टा हो जाती है। मतलब ये कि समाज औरत को ही हर रूप में गलत ठहराता है, मगर मेरा मानना है कि औरत को अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। मतलब अब देखो, जब तक तुम्हारे पापा थे वो मेरे साथ कुछ नहीं करते थे, उनके और अपने परिवार की बदनामी की वजह से मैंने कभी बाहर मुँह नहीं मारा। लेकिन तुम्हारे पापा के जाने के बाद लोग अक्सर मुझे मेरे पहनावे और मेरे बाहर काम करने को बुरा कहने लगे। जब समाज के लिए मैं इतनी बुरी हो ही गई तो फिर क्या डरना? मैंने एक लड़के को अपना पति मान लिया है और उसके साथ मैं अपना पूरा पत्नी धर्म निभाती हूँ। वो भी मेरे एक अच्छे पति की तरह मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है। तुम तो मेरी सहेलियों को जानती हो, उनका भी तुम्हारी तरह हाल है, वो सब भी उस लड़के के साथ खुश रहती हैं। वो लड़का अब उन सब का भी पति बन गया है। जब कोई आदमी एक से ज़्यादा औरत रख सकता है, तो हम एक औरतें एक आदमी को अपना पति क्यों नहीं बना सकते? वो बहुत अच्छा लड़का है और सबसे बड़ी बात तो वो हम सबकी इज्जत करता है। क्यों ना तुम भी अपने दूसरे पापा को अपना दूसरा पति बना लो, वो तुम्हारी ज़िंदगी को भी खुशियों से भर देगा। इतना समझाने के बाद मैंने आरुषि को सत्यम की फ़ोटो दिखाई। वो तो जैसे पागल हो गई, बोली, इतना मस्त लड़के कैसा पटा लिया मम्मी आपने? मैंने कहा, तुम्हारी मम्मी किसी से कम है क्या? वो खुश हो गई और चुदने के लिए मचलने लगी। मैंने उसी समय सत्यम को फ़ोन करके अपनी बेटी के बारे में बताया। वो मान गया और अगले दिन उसको मैंने सुबह 10 बजे अपने घर बुला लिया। आज मैंने बेटी को बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार किया, जैसे आज उसकी सुहागरात हो। फिर मैं उन दोनों को मिलवा कर स्कूल चली गई। और आप ये कहानी freesexkahani.com पर सुन रहे हैं। अब उनकी बेटी की ज़ुबानी कहानी सुनिए। तो दोस्तों, जब मैं सत्यम से मिली तो हैरान रह गई। सच में सत्यम क्या लड़का था, किसी हीरो की तरह दिखता था। मम्मी ने बताया भी था कि बहुत मस्त जोतता है, जोत को बिल्कुल पानी पानी कर देता है। मैं नई नवेली दुल्हन बनकर सत्यम का इंतज़ार कर रही थी। सत्यम कमरे में आकर मेरे बगल में बैठ गया। पहले तो उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर चूमा। उसका इस तरह से मेरे हाथों को चूमना मेरे अंदर उत्तेजना की लहर बना रहा था। उसने पास रखी सिंदूर की डिब्बी उठाकर मेरी मांग भर दी, फिर मेरे माथे को चूमा और मुझे खड़ा करके अपने गले से लगा लिया। जैसे ही मेरे ठोस मम्मी उसके सीने से छुए, मैं खुद ही उसको अपनी बाहों में कस के जकड़ लिया। सत्यम के सीने से लगकर आज मुझे पहली बार इतना सुकून मिल रहा था जितना कभी अपने पति के बाहों में नहीं मिला। वो मेरी नंगी पीठ पर अपना हाथ फेरता और मेरी भी उत्तेजना का लेवल बढ़ता जा रहा था। चूत ने तो रस छोड़ना शुरू कर दिया। उसने मेरा सर पीछे को किया और मेरे गालों पर किस करके मेरे गले को चूमा। उसकी इस हरकत से मेरी तो जैसे जान निकल गई। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों से उठाकर अपने मुंह के सामने किया और उसके नरम होठों पर अपने लाल होठों को रख दिए। अपने होठों की लाली उसके होठों पर लगाने लगी। तब वो मेरे होठों को बड़ी सख्ती से अपने होठों से दबाकर उनका मीठा रस चूसने लगा। वो मेरी जीभ में अपनी लार घोलने लगा। मैं भी इस तरह से उसको चूमने में साथ देने लगी। हम दोनों बेतहाशा किस करने लगे, आपस में एक दूसरे के मुंह की लार का आदान प्रदान होने लगा। मैं उसके सर को पकड़कर अच्छे से किस कर रही थी और अपने हाथों से मेरे जिस्म को सहलाए जा रहा था। मेरी गर्दन, मेरी मम्मी, कमर, यानी हर जगह अपना हाथ फिरा रहा था। इससे मैं और उत्तेजित होकर उसको किस किए जा रही थी। कुछ देर की चुम्मा चाटी के बाद सत्यम ने पूरी साड़ी खोल दी। मैं उसके सामने सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में रह गई थी। पहले उसने बड़ी वासना भरी नज़रों से ब्लाउज में कसी हुई मेरी चुच्चियों को देखा और अचानक से वो मेरे मम्मों पर टूट पड़ा। उनको मसलने लगा, दबाने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से मेरी चुच्चियों को भर लिया और ब्लाउज के ऊपर से उन्हें गूंथने लगा। उसने मम्मों के निचले भाग को पकड़ रखा था, जहाँ से वो मेरे मम्मों की पूरी गोलाई नापते हुए सहला रहा था और दबा भी रहा था। फिर अचानक से उसने मेरी चुच्चियों पर अपने मुंह को लगा दिया और किस करने लगा। सबसे पहले मेरी स्तन घाटी में बीचों बीच उसने किस किया, फिर जीभ को मेरे मम्मों की दरार में घुसा दिया। उसकी जुबान जहाँ तक अंदर पहुँची वहाँ तक उसने मेरी चुच्चियों की घाटी को चाटा। तो आप ये कहानी freesexkahani.com पर सुन रहे हैं। 3-4 बार उसने अच्छे से दूध घाटी को, मेरे स्तनों के किनारों को चाटा और उन्हें गीला कर दिया। फिर मुंह हटाकर दोबारा मेरे मम्मों के साथ खेलने लगा। करीब 2 मिनट तक मम्मों को सहलाने और मसलने के बाद वो ब्लाउज के बटन खोलने लगा। उसने सारे बटन खोलकर ब्लाउज को नीचे गिरा दिया। मेरे जिस्म के ऊपरी भाग नंगा हो गया था। उसके हाथों के स्पर्श से मैं जैसे सम्मोहित होती जा रही थी। तो दोस्तों, किस तरह से मेरे मम्मी के यार से मेरी चूत चुताई का आगाज़ हुआ, ये मैं आपको सेक्स कहानी के अगले हिस्से में सुनाऊंगी।